सबको नमस्कार, स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, जैसे ही मैंने भी शुरुआत करने की सोच रहा था तो इसे लगता है कि 70 साल स्वतंत्रता के बाद एक महीना बड़ा लैंडमार्क है और हर आदमी का सोच उस पर ही उस तरफ ही जा रहा है कि हमने क्या पाया है इन 70 सालों में और आगे के काम क्या है। तो एक तरफ से देखें तो 70 साल देश की राष्ट्र के जीवन में उतना बड़ा समय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे तो काफी समय भी है। आप सोचिए कि ब्रिटिश राज यानी अंग्रेज की सरकार की राज सिर्फ 90 साल की, 1858-1947। उसके पहले कंपनी की राज था 100 साल की, वही ब्रिटिश राज तो सिर्फ 90 साल, और हम 70 साल बीच पे हैं स्वतंत्रता के बाद। तो पीछे मुड़ कर देखें तो हमें क्या महसूस होता है, क्या दिखता है? शायद जैसे मिश्रा जी ने कहा, कभी कभी हमें खुश होता है, संतुष्ट हो जाते हैं, और कभी कभी अफसोस भी। तो ये सच्चाई की बात होती, दोनों फीलिंग्स होते हैं जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं, लेकिन हम अफसोस को छोड़े और भविष्य की तरफ देखें आगे क्या है। अब अगले एक साल में, दो साल में, अगले 10 साल में हमें क्या हासिल करना है, क्या अचीव करना है, इस पर सोचें और लगन के साथ हम उस काम पर लग जाए। तो कुछ अगर हमें अचीव करना है तो लक्ष्य जो है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, ये हमें क्लियरली दिखना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, और इस पर हमें सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो मैं देश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं एक व्यक्तिगत तौर पर नहीं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की, बल्कि मैं संस्था की तरफ से मैं सोच रहा हूं कि क्योंकि व्यक्ति से संस्था काफी बड़ा होता है, काफी शक्तिशाली होता है, जो व्यक्तिगत रूप में हमें बहुत कम ही कर पाएंगे, लेकिन संस्था तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन संस्था तब अचीव करेगा अपने ध्येय को या लक्ष्य को जब हर व्यक्ति भी बहुत ध्यान से और लगन से, मेहनत से काम करेगा। तो जैसे देश भी आगे बढ़ सकता है जब देश की संस्थाएं कुछ अचीव करें, तो देश एक कुछ अब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं होता है, वैसे ही संस्था भी आगे जा सकता है जब हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने काम में कुछ अचीव करता है। तो ये हमारे सामने होना चाहिए। तो हम ये देखना चाहिए कि संस्था का जो एम है, जो विजन या जो सपना है, तो देश के सपना का भी एक कसर है, एक छोटा सा भाग है, और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव से एम्स है उस पर हम ध्यान देना चाहिए। तो वैसे ही संस्था की एम्स और लक्ष्य में व्यक्ति, हर व्यक्ति का भी एक कुछ एम जुड़ा हुआ है, तो ये अलग अलग नहीं हो सकते, ये तो साथ नहीं जा सकते। तो होमी बाबा केंद्र के ये क्या है? तो 3 साल पहले 2014 प्रोफेसर जयश्री रामदास जो आज आए हैं, दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग कि वो है आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो प्रोफेसर रामदास के नेतृत्व में, प्रोफेसर चित्रा नटराजन के नेतृत्व में एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जो चर्चा के आधार पर तैयार किया था, सब लोग शामिल थे उसमें, सब लोग की योगदान, और इसमें लिखा गया है 3 मेन एम्स, 3 मुख्य दृष्टिया लक्ष्य, जिस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जिस मेंशन करना चाहूंगा। पहला है गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा, विज्ञान शिक्षा मतलब उसके साथ जुड़े हुए विषय जैसे गणित या तकनीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये एक समानता से मिल, क्वालिटी एंड इक्विटी दोनों महत्वपूर्ण है। और तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा या गणित शिक्षा सबको मिलता है, न केवल जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्राम से आते हैं बल्कि जो गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़े वर्ग के होते हैं, उनको भी क्या मिल रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो इस लक्ष्य को पूरा करने में हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसकी सुधार के लिए काम करना चाहिए। तो ये ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो होमी बाबा केंद्र की एक शायद एक प्रथम लक्ष्य, जब पहले वैज्ञानिक अपने अपने एयर कंडीशन लैब्स और एयर कंडीशन बिल्डिंग वातानुकूलित इमारतों से बाहर निकले और म्युनिसिपल शालाओं में गए, टीचर्स के साथ विद्यार्थियों के साथ काम किए, तो क्या हम आज भी तैयार हैं, हम कर रहे हैं हमारे सुविधा पूर्वक ये क्षेत्रों से बाहर निकल कर हम कुछ जाकर हम काम कर रहे हैं? ये सवाल हमें हमेशा उठाना चाहिए और सामना करना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पहला ध्येय था। दूसरा ध्येय जो लिखा गया था उस विजन डॉक्यूमेंट में कि गुणसंपन्न विद्यार्थी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो है उनको गणित और विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने की सामर्थ्य है, सपोर्ट एक्सेलेंस अमॉन्ग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, जो बच्चे जिनको विज्ञान गणित में रुचि है, जो अच्छे से समझ पाते हैं, जिसमें उनको बहुत इंटरेस्ट है, गहराई डीप इंटरेस्ट है, उनको सपोर्ट करना कि वो एक एक्सेलेंस को अचीव। तो इसके भी कार्यक्रम है जैसे ओलंपियाड है, ऐसा आपको मालूम है। तो ये एक दूसरा ध्येय। तीसरा ध्येय है कि देश में विज्ञान की साक्षरता का बढ़ावा, साइंस लिटरेसी, विज्ञान की समझ, इसको इसकी प्रगति का काम करें। ये तीनों ध्येय हमारे सामने हैं और इस ध्येय को पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरीके के कार्यक्रम और काम करते हैं। जैसे मेरे दृष्टि में 8 तरीके के काम होते हैं। एक होता है शोध या अनुसंधान रिसर्च, जिसमें हम ये इस पर शोध करके समस्या को अच्छे तरीके से समझें, विज्ञान शिक्षा गणित शिक्षा में जो समस्याएं हैं देश के सामने अच्छे तरीके से समझें और उसको कैसे हल करना है ये तरीके को। दूसरा जो कार्यक्रम हम चलाते हैं वो ग्रेजुएट स्कूल है, पीएचडी प्रोग्राम है, जहाँ पे भविष्य में जो लोग नेतृत्व लेंगे विज्ञान शिक्षा और गणित शिक्षा के क्षेत्र में, उनको हम उनकी तैयारी करें। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ध्येय है कि हम कार्यक्रम हैं जिससे जो बाहर निकलते हैं जो अगले पीढ़ी की नेतृत्व लीडर्स बनते हैं। और एक कार्यक्रम है मेटीरियल डेवलपमेंट, गुणवत्तापूर्ण संसाधन शिक्षा की हम डेवलप करें, तो इसकी ओर काम करना। चौथा है अध्यापकों का प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग या टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और एक कार्यक्रम है ओलंपियाड, खास करके नर्चर करता है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को एक्सेलेंस की तरफ। और एक प्रोग्राम है जो कॉलेज की विद्यार्थियों कॉलेज के स्तर पर काम करता है, NIES प्रोग्राम। तो ये 6 हो गए। और 7वां है सरकारी संस्थाओं को समर्थन देना, सपोर्ट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे NCERT, SCERT, टेक्स्ट बुक लिखने के काम में, पॉलिसी बनाने के काम में, इस पर सपोर्ट दें, इसको पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें, तो ये भी एक तरह के काम होता है। और विज्ञान प्रसार, साइंस पॉपुलराइजेशन या साइंस डिसमिनेशन, तो ये 8 तरह अलग अलग तरह के कार्यक्रम हम चलाते हैं संस्था के। और हर चीज में हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे काम करें, गुणवत्तापूर्ण काम करें, और जो ध्येय है उसको हम किस हद तक हम अचीव कर पाएंगे। हम तो छोटा संस्था है और ध्येय काफी बड़े हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि हम पूरा देश को बदलें, लेकिन हमेशा ना ध्यान में रहना चाहिए कि हम क्या उसको सचमुच हम जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट है कि नहीं, कुछ फर्क नजर आ रहा है, ये हमें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। और ये मुमकिन नहीं है जब तक हर व्यक्ति संस्था फैकल्टी हो या साइंटिफिक स्टाफ हो, एडमिन स्टाफ हो या दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ हो, कॉस्मेटिक सिक्योरिटी टेक्निकल हो, सब हर कैडर जब काम करेंगे और मेहनत के साथ तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबको ध्यान में ये लक्ष्य ध्यान में होना चाहिए, ये इन लक्ष्यों के लिए हम काम करें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो हम एक कंफर्टेबल सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद हम जब काम करते हैं, हम एक्सपर्ट बन जाते हैं और एक जोन ऑफ कंफर्ट में हम बस जाते हैं, बसे रहते हैं। तो ये जोन ऑफ कंफर्ट से थोड़ा हमें बाहर निकलना है। एक संघर्ष है एक व्यक्तिगत लेवल पर, और हमें कोशिश ये जारी रखना चाहिए कि हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन को भी हम फेस करें। हम यहाँ बहुत अनुकूल क्षेत्र से हम थोड़ा बाहर निकले और चैलेंजेस को अपनाए, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान के बारे में मुझे कहना था, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि काम के बारे में भी मुझे लिखना ही क्या करूँ, जो मेरे दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, जो चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं काम के बारे में तीन चीजें बताना चाहता हूँ। ऑफकोर्स ये सबको मालूम है कि हमारे संस्था में, हमारे केंद्र में लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। जब भी कुछ सिचुएशन आता है तो सब लोग साथ में मिलकर कोऑपरेटिवली, कोलैबोरेटिवली काम करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको सॉल्व करता है। तो ये इससे हमें गर्व होना चाहिए और मुझे सबको गर्व हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम किस तरफ हम बढ़ सकते हैं, किस तरफ हमें बाहर प्रगति हो सकती है, प्रोग्रेस। एक मुझे कहना था कि काम में एफिशिएंसी, जिसको जिसका हिंदी शब्द है दक्षता, तो शायद ये सही है। तो दक्षता मतलब काम करने में हमें कैसे हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमें कम काम करने से ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम काम को ऐसे नहीं खींचे कि वो बहुत समय ले तो बढ़ते जाए, या उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे कि मैं थोड़ा ही करूँगा और बाकी दूसरा करेगा, मैं छोड़ दूंगा। तो इससे एफिशिएंसी कम हो जाता है। हम काम को कैसे एक समय में कर पाएंगे बिना पोस्टपोनमेंट की, और जिसको जब काम मेरे पास आता है तो मैं कैसे उसको कंप्लीट करूं, बाकी लोगों की काम को ना बढ़ाना है, बढ़ाकर उसको छोटा करना, तो सेविंग वर्क फॉर अदर्स। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा जनसंख्या इतना बड़ा है और क्या उतना काम है हमारे साथ, हमारे से बहुत कम जनसंख्या बहुत आगे जा चुके, तो कैसे आगे जा पाए हम इतने लोग। तो मुझे लगता है कि एफिशिएंसी का बहुत काफी फर्क है हमारे देश में और अन्य देश में, और अगर हम बहुत एफिशिएंटली काम करें तो शायद हमें 3-4 घंटा ही एक दिन में काम करना पड़ेगा। हम इतने लोग हैं कि आसान से हम कर पाए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि हर तरह के काम ऐसे होता है, लेकिन काफी हम सोच सकते हैं काम में कैसे नए आइडियाज ला सकते हैं, नए टेक्निकें, और वो दूसरे मुद्दा पर आएंगे। आप ये कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि हम एफिशिएंट क्यों होना चाहिए, तो हम काम तो कर रहे हैं, एफिशिएंसी की क्या जरूरत है, तो समय में करते हैं। तो मुझे लगता है कि एफिशिएंसी इसीलिए जरूरत है कि मैं थोड़ा आगे अगर बोलूंगा तो आपको शायद लगेगा कि जरूरत है। तो दूसरा होता है कि इनोवेशन, आविष्कार जिसको हिंदू में कहते हैं, इन्वेंशन, यानी एक बहुत नया सोच लाना अपने काम, जिससे काम पूरा बदल जाता है। जो मुश्किल काम था पहले वो बहुत आसान हो जाता है, जो समय लेता था वो बहुत जल्दी से कर पाते, या जो काम हम नहीं कर पाते थे पहले अब कर पाते। तो ऐसे कुछ तरीके ढूंढना, ऐसे कुछ तकनीक। आज आपको पता है कि हमारे सामने टेक्नोलॉजी के बहुत सारे साधन, सो इन टूल्स को इस्तेमाल करना, एक अच्छे सोच लाना, नया सोच लाना, नया आइडिया, तो ये जरूरी है। और ये अगर लाना है तो हमें समय की जरूरत है। आप काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे तो ही आपको समय बचेगा जिसमें हम इनोवेशन वगैरह कर सकते, तो ये इसीलिए एफिशिएंसी की जरूरत। तीसरा मुद्दा है कि ग्रोथ, जो व्यक्तिगत विकास, तो मैं काम के दृष्टि से कि इंडिविजुअल ग्रोथ होना चाहिए। क्या अगर मैं पिछले साल या दो साल पहले की मेरा क्षमता को देखूँ और आज की मेरा क्षमता को देखूँगा, क्या कुछ ग्रोथ हुआ, कुछ प्रगति हुआ, क्या मैं आज ज़्यादा काम या ज़्यादा कर पाऊँगा, ज़्यादा समझता हूँ, मेरा कैपेबिलिटी बढ़ गया है, ये भी बहुत। तो प्रोफेशनल ग्रोथ का भी एक भाग होना चाहिए हमारे काम, और इसके लिए भी समय चाहिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ कोर्सेस या वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो सब समय तब मिलेगा जब आप बाकी का काम आप समय में एफिशिएंसी के साथ पूरा करें। ठीक है, ये तीन चीजें काम के बारे में, और तीन चीजें मुझे कहना था कि जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्यक्तिगत स्तर पर। ये तो पहला है हेल्थ, स्वास्थ्य, यानी संस्था की सदस्यों की स्वास्थ्य के बारे में, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और हमें समझना चाहिए कि संस्था भी उसके लिए जो कर पाता है फायदा करना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ही हम काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, आपकी ग्रोथ होगा। तो स्वास्थ्य के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, काम जब करते समय इसको भी ध्यान में रखिएगा, और एक संतुलन, बैलेंस लाना चाहिए, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आपकी स्ट्रेस लेवल बहुत है तो जरूर किसी से बात कीजिए, कुछ क्लियर से या किसी से स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो बहुत जरूरी चीज है। और स्वास्थ्य के लिए और भी कदम उठाना पड़ेगा आपको, कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और शायद जो खाने वगैरह चीजें, पीने का पानी, ये भी साफ होना चाहिए, हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस होना चाहिए कैंटीन में जो हम सब देते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है संस्था के, और ये व्यक्तिगत स्तर पर भाग। दूसरा जो चीज है जो व्यक्तिगत स्तर पर मानते हैं मुझे लगता है कि वो है परिवार, यानी जो लोग से आप बहुत क्लोज है, हो सकता है कि आपके पति पत्नी हो, बेटे हो, माँ बाप हो, या शायद आपके खास दोस्त भी हो, ये सब इन सबको मैं परिवार मानता हूँ, और इनके साथ थोड़ा समय बीतना खुशी के साथ, ये भी जरूरी है, और इसके लिए भी समय चाहिए। काम करते करते इतना काम पर नहीं लगना चाहिए कि इसमें कुछ अधूरा रह जाए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट। और फाइनली आनंद, काम में आनंद, जीवन में आनंद, हैप्पीनेस, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंस्टीट्यूशन, संस्था को भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये संस्था के सदस्य कुछ आनंद यानी खुशी एक्सपीरियंस करें, महसूस करें, और इट इज बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो इसके लिए जो संस्था के अंदर कुछ कार्यक्रम हो सकता है तो हम अरेंज करते हैं, तो संस्था के बाहर का जीवन भी एक संतुलन लाना चाहिए, बाहर का जीवन का हिस्सा भी को भी महत्वपूर्णता देनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही कहना था मुझे, और फिर से बेस्ट विशेस, बधाइयां, शुभकामनाएं, और शायद इस पर चर्चा करते रहे हम।